श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय श्लोक संख्या 5
विदुर ने यह देखा कि उद्धव में पूर्ण भाव के कारण दिव्य शारीरिक विकार हो गए हैं और वे अपने मुंदे हुए नेत्रों से वियोगजन्य शोक के अश्रुओं को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार विदुर जी को यह ज्ञात हो गया कि उद्धव ने भगवान के प्रगाढ़ प्रेम को पूर्णतया आत्मसात कर लिया है। तात्पर्य, विदुर भगवान के अनुभवी भक्त थे। उनको भक्ति मार्ग के सर्वोच्च लक्षण देखकर यह भरी भांति ज्ञात हो गया कि उद्धव भगवान के प्रेम की सिद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं। भाव से ओतप्रोत शारीरिक परिवर्तन अर्थात सात्विक विकार आध्यात्मिक भूमिका पर प्रकट होते हैं। वे अभ्यास द्वारा विकसित कृत्रिम अभिव्यक्ति नहीं है। भक्ति में विकास की 3 विभिन्न अवस्था होती हैं। पहली अवस्था में शास्त्र में निर्धारित भक्ति के विधि विधान विधि निषेध का पालन किया जाता है। दूसरी अवस्था में भक्ति की दृढ़ अवस्था का परिपक्व और साक्षात्कार होता है अंतिम अवस्था भाव की अवस्था है जिसका लक्षण दिव्य शारीरिक अभिव्यक्ति के द्वारा है। नवधा भक्ति जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण आदि से इस प्रक्रिया का आरंभ होता है। श्री भगवान की महिमा और लीलाओं का नियमित श्रवण करने से शिष्य के हृदय का मल धुलना आरंभ हो जाता है। हृदय का मल जितना ही धुलता है भक्ति में उतनी ही स्थिरता आती है। क्रमशः एक के बाद एक ये क्रियाएं स्थिरता अटल श्रद्धा रुचि साक्षात्कार और परिपाक रूप ग्रहण कर लेती हैं। क्रमिक विकास की ये विभिन्न अवस्थाएं भगवान के प्रेम में वृद्धि करती हुई उसे पूर्ण अवस्था तक पहुंचा देती हैं और सर्वोच्च अवस्थाओं में राग क्रोध और आसक्ति जैसे अन्यान्य लक्षण प्रकट होने लगते हैं जो विशेष अवस्थाओं में क्रमशः बढ़कर महाभाव अवस्था में परिणत हो जाते हैं। सामान्यतः जीवित प्राणियों के लिए यह अवस्था प्राप्त करना संभव नहीं होता। ये सब लक्षण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित हुए थे जो भगवत प्रेम के मूर्त रूप थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा लिखे हुए शिव भक्तिरसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में उद्धव जैसे विशुद्ध भक्तों में प्रकट होने वाले दिव्य लक्षणों का विधिवत वर्णन किया है। हमारे द्वारा प्रकाशित श्री भक्तिरसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में अध्ययन सार प्रस्तुत किया गया है। भक्ति के विज्ञान पर विस्तृत जानकारी के लिए इस ग्रंथ का अध्ययन किया जा सकता है। विदुर ने यह देखा कि उद्धव में पूर्ण भाव के कारण दिव्य शारीरिक विकार हो गए हैं और वे अपने मुंदे हुए नेत्रों से वियोगजन्य शोक के अश्रुओं को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार विदुर जी को यह ज्ञात हो गया कि उद्धव ने भगवान के प्रगाढ़ प्रेम को पूर्णतया आत्मसात कर लिया है। प्रभुपाद जी प्रथम पंक्ति में लिखते हैं विदुर भगवान के अनुभवी भक्त थे और इसीलिए वो उद्धव जी को देख करके समझ पाए कि उनकी स्थिति क्या है। इसलिए वैष्णवेर क्रिया मुद्रा ना भुंजिए, जो वैष्णव की जो क्रिया मुद्रा है उसको समझना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। वो एक वैष्णव ही वैष्णव की क्रिया मुद्रा को समझ सकता है। तो इसलिए विदुर जो है वो भगवान के अनुभवी भक्त हैं, इसलिए वो समझ पा रहे हैं कि उद्धव जी के अंदर भाव के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। उसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके मूर्छित होकर गिर गए तो जो सामान्य वो पंडे वहाँ थे वो लोग सोचे कि ये तो कोई ढोंगी है क्या है और इसको बाहर फेंकने लगे, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य वहाँ पर आए और वो हालांकि वो भक्त नहीं थे उस समय तक, लेकिन शास्त्रों में प्रखंड पंडित थे और शास्त्रों में वर्णित जो भाव के लक्षण होते हैं उससे वो परिचित थे। तो इसलिए उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु को कि उनके शरीर में तो जो लक्षण है वो तो कोई सामान्य व्यक्ति के द्वारा प्रदर्शित लक्षण नहीं है। तो उन्होंने अलग अलग प्रकार से देखा कि ये क्या सामान्य मूर्छा है या ये भाव है। तो उन्होंने उनके शरीर की कांति को देखा, उनकी लंबी लंबी भुजाएं थीं, चैतन्य महाप्रभु घुटनों तक आ रही थीं, और फिर एक से रुई से देखा कि श्वास बहुत धीरे धीरे चल रही है, वो जीवित हैं। लेकिन उस प्रकार के रोमांच इत्यादि सब लक्षण उनके शरीर में प्रकट हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर रोक करके सबको बोला, ठीक है, इनको हमारे घर ले चलते हैं, क्योंकि अभी ये भाव के मुद्रा में है। तो महान भागवतों के शरीर में विशेष लक्षण होते हैं। विशेष रूप से भगवान जब स्वयं आते हैं या उनके अवतार, जैसे भगवान श्री राम, तो उनका भी वर्णन हम देखें तो वो विशिष्ट लक्षण है शरीर के अंदर। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु, तो सारो भट्टाचार्य ने ये लक्षण देखे और भाव की स्तर के लक्षणों को देखा। और फिर बाद में पीछे पीछे चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे ढूंढते ढूंढते नित्यानंद प्रभु, फिर गोपीनाथ आचार्य, ये सब लोग भी आ गए। और फिर हरे कृष्णा कीर्तन प्रारंभ किया तो चैतन्य महाप्रभु बाह्य चेतना में आ गए। और फिर गोपीनाथ आचार्य और चैतन्य महाप्रभु सारंग भट्टाचार्य के बीच में संवाद हुआ, और गोपीनाथ आचार्य ने बताया कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे घर में साक्षात भगवान आए। तो सारंग भट्टाचार्य को तो पहले विश्वास नहीं हुआ और वो तर्क करने लगे कि कैसे है शास्त्रों के आधार पर। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनको अनुभूति हुई कि ये साक्षात भगवान है। तो ये जो भाव के लक्षण हैं, जैसा हम कल भी सुन रहे थे कि और यहाँ श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति की जो प्रगति होती है उसमें तीन सोपान है, उसके स्टेप्स हैं। पहला है वैधी भक्ति, फिर रागानुगा, और फिर अंत में भाव भक्ति। तो प्रथम चरण के अंदर भक्त शास्त्रों के नियम के अनुसार विधि विधानों का पालन करता है। इस समय उसको भगवान की सेवा में अनुराग नहीं होता है। उसके अंदर भी दो स्टेप हैं, एक होता है क्या बोलते हैं उसको, एक रागात्मिका, और उससे पहले वैधी भक्ति, साधन भक्ति के दो स्तर, वैधी भक्ति और रागात्मिका। तो साधन भक्ति अर्थात जहाँ पर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, वो साधन भक्ति है। अभी उसके अंदर वैधी भक्ति अर्थात जो विधि विधानों के द्वारा की जाती है, अनुशासन के अंतर्गत रह करके की जाती है। और फिर उसमें जब धीरे धीरे थोड़ा लगाव भगवान से उत्पन्न होने लगता है, जब विधि विधानों को पालन करना अच्छा लगने लगता है स्वाभाविक रूप से, तब उसको रागात्मिका कहते हैं। और आगे प्रगति करने पर रागानुगा भक्ति प्रारंभ होती है, जिसमें व्यक्ति भगवान कृष्ण की लीला के अंतर्गत कोई भक्त जो भगवान के एक पर्टिकुलर रस में भगवान की सेवा कर रहे हों, उनका अनुसरण करना प्रारंभ करते हैं और भगवान की सेवा करना उनके लिए बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। और उसी स्तर में आगे चल करके फिर धीरे धीरे ये भाव भक्ति में प्रवेश करते हैं, जिसमें भाव के लक्षण अष्ट विकार, सात्विक विकार जो हैं वो प्रकट होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि ये पढ़ करके लोग कृत्रिम रूप से उसका अनुकरण करने का प्रयास करते हैं विकार का, तो बंगाल में विशेष रूप से ये बड़ा प्रचलित है, इस प्रकार से विकार अष्टविकार प्रस्तुत होते हैं जब कीर्तन करते हैं तो बहुत से लोग जमीन में लौटने लगते हैं और आंसू निकल लगते हैं। और अरे आपने देखा होगा जब आप गए थे तो नहीं मे भी इस्कॉन में आप गए प्रोग्राम में इससे नहीं देखने को मिला, सामान्य कीर्तन में होता है बाहर। तो और क्योंकि बंगाल में चैतन्य महाप्रभु के प्रचार के कारण प्रभाव के कारण तो सामान्यतः सब लोगों को ये विदित है भक्ति और क्या है सात्विक विकार, ये सब जानते हैं। तो इसलिए सही निर्देशन नहीं होता है तो कृत्रिम रूप से वो इसको प्रकट करने का प्रयास करते हैं। जैसे वैष्णव समझ है कि महाभागवतों की चरण रज और उनका उच्चिष्ट और उनके चरण का पानी ये लेने से भक्ति में निष्ठ हो जाते हैं। तो हम पाएंगे कि बहुत से लोग बड़े उत्सुक होते हैं चरण रज लेने के लिए, विशेष प्रयास करते हैं, लेकिन अगर विधि भक्ति पहले उसमें वो स्थिर नहीं हुए हैं और कृत्रिम रूप से ये विकार सात्विक विकार लाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनका प्रगति जो है वो ढंग से नहीं हो पाता है भक्ति में, वो हमेशा कनिष्ठ बने रहते हैं। तो इसलिए क्रमबद्ध होकर के जाना बहुत जरूरी है, पहले विधि भक्ति में स्थित होना बहुत जरूरी है। स्वाभाविक रूप से अपने आप हमारी प्रगति होने पर ये सब आगे आगे प्रगति होगा, लेकिन कृत्रिम रूप से हम अपने से उत्तम आगे स्तर को हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए भक्ति में। हम जिस स्तर पे हैं हमें उस स्तर पर अपने को स्वीकार करना चाहिए, अपने से आगे वाले स्तर पर अपने को प्रदर्शित करना की जो भावना है ये भक्ति के लिए बड़ा अवरोध है, क्योंकि ये भावना दिखाती है कि हम भगवान की भक्ति के माध्यम से खुद अपना रसास्वादन करने के लिए उत्सुक हैं, एन्जॉयमेंट के लिए उत्सुक हैं। हम ये बात को एन्जॉय करना चाहते हैं कि हम बड़े भक्त हैं, इसलिए हम कृत्रिम रूप से अपने से आगे की स्थिति को अपने ऊपर लादना चाहते हैं भले ही हम उस स्थिति में ना हों। लेकिन जब वास्तव में भक्त उस स्थिति में पहुँचता है तो वो बल्कि कभी भी अपने को प्रदर्शित नहीं करता है कि मैं उन्नत हूँ, लेकिन जो कनिष्ठ होता है वो ये प्रदर्शित करता है कि मैं उन्नत हूँ, ये दोनों में अंतर होता है। तो जैसे यहाँ पर उद्धव जी ये विकार प्रस्तुत हो रहे हैं और वो आंसू हैं उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष रूप से हमारे जो अभी निकटवर्ती आचार्य हुए हैं उन्होंने ये जो अष्ट विकार हैं इनको सामान्य जनता के सम्मुख प्रकट नहीं किया, हमारे जो निकटवर्ती आचार्य हैं उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु के समय में हम देखते हैं कि अनेक भक्त ये लक्षण प्रस्तुत करते थे, लेकिन हमारे निकटवर्ती आचार्य श्री प्रभुपाद श्री भक्ति सरस्वती महाराज तो वो सामान्यतः इन लक्षणों को प्रस्तुत नहीं करते थे। हालांकि अनेक लक्षणों से हम समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति निश्चित रूप से इस स्थिति में थी और इससे आगे भी, क्योंकि जो वर्तमान समय है वो अलग है इस दृष्टि से कि लोगों का जो आध्यात्मिक स्तर है वो इतना निम्न है कि कोई भक्त यदि इन उत्तम स्थिति के लक्षणों को प्रस्तुत करता है तो बहुत संभावनाएं हैं कि लोग उनका अनुकरण करना शुरू कर देंगे और समाज में अव्यवस्था फैलाएंगे, सहजिया वृत्ति को फैलाएंगे। तो इसलिए जो हमारे निकटवर्ती आचार्य हैं वो इसको अभिव्यक्त नहीं करते हैं, जैसे हम श्री प्रभुपाद के जीवन में देख सकते हैं। तो ऐसे अनेक बार श्री प्रभुपाद जी चाहते हुए कई बार भाव लक्षण पशु करते, लेकिन उनको बड़ा खेद होता था कि मैं रोक नहीं पाया। एक बार बहुत बड़ा कार्यक्रम पंडाल प्रोग्राम था, बहुत बड़ा, हजारों लोग बैठे थे और श्री प्रभुपाद जय राधा माधव गाना शुरू किए या प्रवचन के बीच में, आई थिंक प्रवचन के बीच में, और प्रवचन के बीच में और अचानक स्तब्ध हो गए और एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, चार मिनट हो गए और सब लोग बैठे हैं और प्रभुपाद बाह्य चेतना में नहीं है। तो फिर सभी शिष्य कीर्तन करना प्रारंभ कर दिए और 10 मिनट के बाद श्री प्रभुपाद जी बाह्य चेतना में आए और फिर प्रवचन शुरू किए। प्रवचन होके फिर जब वापस आए तो भक्तों से पूछे कि क्या हुआ था, क्या हो गया था, उनको पता नहीं कितना समय निकल गया, क्या हुआ था। तो भक्तों ने बताया तो उन्होंने ऐसे खेद व्यक्त किया, आई एम सॉरी, आई कुडंट रेजिस्ट। तो इस प्रकार से हमारे निकटवर्ती आचार्यों का दृष्टिकोण रहा है। तो प्रभुपाद जी के भाव के लक्षण प्रस्तुत होते हैं उनके इन भागवत परपर्ट्स में, कि उनकी जो महान स्थिति है कि रात रात को उठ उठ के प्रभुपाद जी सोने की भी इच्छा नहीं करते हैं, इतना अनुराग है उनको भगवान के बारे में गुणगान करने में कि कभी थकते नहीं हैं, दिन रात अत्यंत उत्साह से वर्धन से कीर्तन करते जाते हैं। तो ये लक्षण है, ये बताता है कि श्री प्रभुपाद भाव स्थिति में हैं। और प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद ने बताया ये मेरी एक्सटेसी हैं, माई पर्पट्स आर माई एक्सटेसीज, ये मेरी एक्सटेसी, क्योंकि पुलकित होकर के प्रभुपाद ये सब वर्णन कर रहे हैं जो पूरे संसार को मार्गदर्शन दे रहे हैं। एनीवे, ये जो सात्विक विकार है ये कोई मानसिक कल्पनाएं नहीं है, इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कृत्रिम रूप से जो व्यक्ति अपने शरीरों में इन विकारों को प्रस्तुत करने के प्रयास कर रहा है और जो वास्तव में भक्ति के उस स्तर तक पहुंचा है, दोनों में हम भेद कर सकते हैं, अन्य लक्षणों के माध्यम से हम भेद कर सकते हैं। जैसे हम पाएंगे कि जो व्यक्ति सहजिया वृत्ति धारण करके इन विकारों को प्रस्तुत करते हैं तो उनकी जो दार्शनिक समझ होगी कृष्ण भावनामृत के विषय में, वो सब अनेक त्रुटिपूर्ण होगी। उनकी जो दार्शनिक समझ होगी वो त्रुटिपूर्ण होगी, उसमें बहुत सारी कमियां होंगी उनकी समझ में। यदि हम उनसे वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे तो हम पाएंगे बहुत बड़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके अंदर हैं, जो शास्त्र के कंक्लूजन के, आचार्य के कंक्लूजन के विरुद्ध हैं। रूप गोस्वामी जो मंजरी हैं, रूप मंजरी जो भाव स्थिति से और आगे हैं, उनके द्वारा निर्दिष्ट जो मार्गदर्शन है भक्ति से उनकी समझ है, उससे विपरीत उनकी समझ होगी। तो इसलिए रूप गोस्वामी तो लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र किम विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। तो जो श्रुति स्मृति के निर्देशों निचोड़ के विरुद्ध जो भक्ति होती है वो समाज में केवल उत्पात मचाती है। तो हम पाएंगे कि अनेक लोग जो ऐसे लक्षण प्रस्तुत कर रहे हैं, सामान्यतः उनको प्रवचन सुनने में रुचि नहीं होती है। इसीलिए उनकी जो दार्शनिक समझ है वो बहुत कच्ची होती है। देवी देवता भगवान में क्या अंतर है, या उनके जो जीवन है हम उसमें देखें तो इंद्रिय भोग में वो लिप्त होंगे, चाय पीते होंगे, चाय के एडिक्टेड होंगे। तो जो व्यक्ति अभी चाय के लिए एडिक्टेड है और वो भाव के लक्षण प्रस्तुत हो तो ये संभव नहीं है, या स्त्रियों के प्रति आकर्षण। तो इस तरह से हम देखते हैं सहजिया मेंटालिटी वाले लोगों में अनेक बार ऐसा पाया जाता है कि वो उनका जो 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 उनका व्यक्तिगत जीवन होता है वो बड़ा ही घृणित होता है, व्यभिचार और बीड़ी इत्यादि अनेक अनेक ऐसे लक्षण होते हैं। तो इन सब लक्षणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो विकार हैं ये कृत्रिम रूप से इमिटेट किए हुए, क्योंकि भक्ति में प्रगति पर ये दोनों चीजें साथ साथ होती हैं, भौतिक इंद्रिय भोग से विरक्ति यानी वैराग्य और भगवान के प्रति सेवा के प्रति अनुराग, ये दोनों चीजें साथ साथ बढ़ती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज बढ़ जाए और एक चीज नहीं बढ़े, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए दोनों चीज साथ साथ बढ़ती हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि क्या वास्तव में कोई व्यक्ति उस स्तर पर है। तो भक्त को चाहिए कि इन अलग अलग भक्ति के मार्ग में जो स्थितियां हैं इनको जाने, अपनी स्थिति को समझे और उस स्थिति के लिए जो कार्य हैं उसके भक्ति के अंतर्गत नियम है उनका पालन करें, और इसमें वो दृढ़ संकल्प रहे, दृढ़ निश्चित रहे कि वो भी इन सब धीरे धीरे स्टेजेस को प्राप्त करेगा, और धैर्यवान होना चाहिए उसके लिए कि वैदिक भक्ति हम कर रहे हैं तो हमारे अंदर अभी अष्टविकार नहीं आ रहे हैं, बहुत दिन हो गए, साल हो गया, दो साल हो गया, तो उसके लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। तो अपने हृदय को कलमश को दूर करने के लिए हमें उत्सुक होना चाहिए, प्रयासरत होना चाहिए, वो होने पर धीरे धीरे अपने आप सब लक्षण प्रकट होंगे। और जो कृत्रिम रूप से जो ये भक्ति के उच्च स्तर का अनुकरण किया जाता है उससे कोई प्रभाव नहीं हो सकता, उससे केवल पतन होता है, उससे ना तो प्रचार हो सकता है क्योंकि अपना ही शुद्धि नहीं, उसका तो प्रचार कैसे होगा उससे। तो इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे जो भक्त हैं वो थोड़े समय रहते हैं और फिर गिर जाते हैं, पतन हो जाता है, च्युत हो जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति के सही सिद्धांतों को अनुशीलन सही प्रकार से उनका अनुशीलन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे सात्विक विकार की स्थिति तक हम पहुंचे इसके लिए हमें उत्सुक जरूर होना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए लेकिन उत्सुक जरूर होना चाहिए। आई नंद तनुज किं करम, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं कैसे विष के सागर में गिर गया हूं और कब वो समय आएगा जब मेरे आंखों से आंसू ऐसे गिरेंगे। तो उसके लिए मैं उत्सुक होना जरूरी है, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन साथ साथ धैर्य भी होना चाहिए कि जब भगवान देखेंगे कि मैं परिपक्व हो रहा हूं, मेरा कलमश धुल रहा है, तो भगवान समय आने पर अपने आप मुझे कृपा करेंगे मेरे ऊपर। तो उसके लिए धैर्यवान होना चाहिए लेकिन उत्सुक होना चाहिए, इससे उत्साह धैर्य निश्चया। भक्ति में प्रगति करने के लिए रूप गोस्वामी बताते हैं प्राथमिक चीजें क्या है, उत्साह धैर्य निश्चय, उत्साहित होना चाहिए कि क्यों अभी तक इतना समय हुआ, इतना अभी भी मेरे अंदर ये मेरी प्रगति नहीं हो रही, अभी भी भौतिक चीजों से मेरा आकर्षण अभी भी है, अभी भी मैं उनसे आसक्त हूं, ऐसी ग्लानी हमको जरूर होनी चाहिए। तो ये जो उत्सुकता है ये दाम है भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो वैदिक भक्ति के अंतर्गत जैसा यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्रवणम और कीर्तनम के जल से भक्ति रता को सींचना चाहिए। अगर श्रवण और कीर्तन के जल से पर्याप्त मात्रा में भक्ति लता बीज को सींचा नहीं जाएगा तो वो लता बढ़ेगी कुछ हद तक और बाद में फिर सूख जाएगी। तो इसके लिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि क्या पर्याप्त मात्रा में हम लोग श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं कि नहीं। रूपा जी बताते हैं कि भक्ति के मार्ग से च्युत होने में सबसे बड़ा कारण होता है केयरलेसनेस। तो सामान्य रूप से जब हम प्रारंभ करते हैं भक्ति के संपर्क में आते हैं तब तो केयरफुल होते हैं बहुत, जैसे जब हम कार सीखना शुरू करते हैं बड़े सावधान होते हैं, तब नींद नहीं आती है, लेकिन जब आ जाती है तो फिर थोड़े समय रिलैक्स हो जाते हैं, तब फिर नींद आने का डर होता है, रिलैक्स आते हैं, फिर एक्सीडेंट भी ज़्यादा मैटर होते हैं, शुरू शुरू होते हैं बड़े सावधान होते हैं, वैसे ही हम जब प्रारंभ करते हैं तो बड़े सावधान होते हैं, लेकिन धीरे 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 अगर रेगुलरली हम इस पर मेडिटेट ना करें कि हमें सावधान रहना है, तो हो सकता है धीरे धीरे किसी न किसी कारण से हम धीरे धीरे असावधान हो जाएं, नियमों के पालन में कठोरता ना बरतें, धीरे धीरे उसमें शिथिल हो जाएं नियमों का पालन करने में, और तो माया ऐसे धीरे धीरे हमको सजेशन दे सकती है, अभी तो तुम बहुत परिपक्व हो, अभी तो तुम बहुत सीनियर भक्त हो गए हो, अभी जरूरी नहीं है कि तुम्हें ऐसे जो है तुम बाहर का कुछ नहीं खा सकते, कभी कभी खा सकते हो, ऐसे अभी तो तुम स्टेबल हो, स्थिर भक्त हो गए, अभी कैसे, अभी रेगुलर नहीं पढ़ोगे भगवद्गीता, तुम जानते तो हो भगवद्गीता में क्या है ऑलरेडी, भगवद्गीता तो तुम जानते ही हो, भागवतम जानते हो, इससे जरूरी नहीं है कि आप उसको रेगुलर पढ़ो, कभी कभी पढ़ो चलेगा, ऐसे बहुत सारे सेशन माया दे सकती है, ये जरूरी नहीं है हर दिन मंगला आरती में आओ, कभी कभी जाओ ठीक है, अभी तो आप तो हमेशा कृष्ण भावनामृत में रहते हो, पूरा दिन भगवान की सेवा करते हो, आप तो फुल टाइम डिवोटी हो, इसलिए हमेशा भगवान की सेवा में हो, ऐसे बहुत सारे माया सेशन दे सकती है, तो इसलिए होता है कभी कभी हम सामान्य रूप से देखते हैं कई बार कि थोड़ा सा कई कुछ सालों के बाद में शिथिलता आ जाती है, तो जो नए भक्त होते हैं वो बड़े उत्साही होते हैं, और थोड़े समय बाद जो थोड़े सीनियर होते हैं वो लोग शिथिल हो जाते हैं, तो फिर कुछ भाई कई बार सीनियर डिवोटीज जूनियर डिवोटीज को कहते हैं हाँ ये तो नया नया उत्साह है, हमें भी उत्साह था पहले हमने अभी 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 नया नया है ठीक है, लेकिन ये गलत है, जैसे हम देखते हैं भौतिक संसार में ऐसा होता है कि जैसे कोई आदमी कोई नया इंस्पेक्टर आता है तो बहुत सब जो चोर उचक्के होते हैं छोटे छोटे उनको सबको बड़ा दंड देता है, टाइट हो जाता है, तो सब बोलते हैं नया नया आया अभी नया नया जोश है अभी ठीक हो जाएगा, तो भौतिक जगत में जोश जो है वो ठंडा होता है, लेकिन आध्यात्मिक में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है कि ऐसा हो कि जोश ठंडा हो जाए, इसलिए अगर कोई वरिष्ठ भक्त ऐसा बोल रहा है कि हाँ नया नया जोश है थोड़े दिन में शांत हो जाएगा, नहीं ये गलत प्रचार, ऐसा जरूरी नहीं, वो वरिष्ठ भक्त की सावधान न होने के कारण उसका जोश कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सबके साथ ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, अगर कोई भक्ति अगर कोई सावधानी से भक्ति में प्रगति कर रहा है तो उसका उत्साह दिन पे दिन बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ये लक्षण है कि व्यक्ति की प्रगति हो रही है, उसका उत्साह बढ़ना चाहिए, इसीलिए जो कनिष्ठ भक्त हैं वो उत्तम जो सीनियर डिवोटीज हैं उनको देख करके उनको उत्साह मिलना चाहिए, ना कि हतोत्साह होना चाहिए, कई बार नए भक्तों को वरिष्ठ भक्तों को देख करके हतोत्साह होता है कि अरे भाई ये तो 10 साल पुराने हैं लेकिन ये तो उत्साही नहीं है, तो हमारा भी ऐसा तो नहीं हो जाए कि 10 साल बाद हम भी ऐसे हतोत्साहित हो जाएंगे, तो उनको देख करके उनको हतोत्साह मिलता है, तो इसलिए वरिष्ठ भक्तों का विशेष कर्तव्य भी है कि वे उनके खुद के भले के लिए और नए भक्तों के भले के लिए कड़ाई से अपने को कृष्ण भावनामृत के जो ये प्रणाली है उसमें अपने को अप्लाई करें सावधानी से, जैसे हम और जैसे ही वो भक्त दोबारे से इस प्रोसेस में अपने को अप्लाई करेंगे तुरंत वो देखेंगे फिर दोबारा से वही नयापन वही स्फूर्ति प्राप्त हो गई है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे श्रवण कीर्तन और भगवान की अलग अलग सेवाओं में रत रह करके विशेष रूप से अपने मन को भगवान की सेवा में प्रयोजित करके भक्त पाएंगे कि उनकी प्रगति हो रही है, वो अधिक अधिक स्थिर हो रहे हैं, और ये सब वो आश्वस्त होंगे अधिक से अधिक कि हाँ निश्चित रूप से हम उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसके निकट पहुँच रहे हैं, भाव भक्ति के निकट पहुँच, हमारी प्रगति हो रही, भले ही भाव भक्ति से बहुत दूर हैं लेकिन हमारी प्रगति हो रही है, कम से कम इतना विश्वास इतना ये हमको होना चाहिए, अपनी प्रगति से हमको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई एम प्रोग्रेसिंग, अगर हमें लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही कि नहीं हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो मतलब कुछ गड़बड़ है, हमारे अनुसरण करने में कुछ गड़बड़ है, जब हम भक्ति प्रोसेस कर रहे हैं, सो वी शुड फील दैट आई एम एडवांसिंग ग्रेजुअली, भले ही अभी बहुत दूर है ये हम जान सकते हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से जब तक अनर्थ निवृत्ति के स्तर को हम पार नहीं कर लेते, जब तक तब तक प्रगति में अनेक विघ्न आते हैं और अथक प्रयास करना पड़ता है उसके लिए अनर्थ निवृत्ति के स्तर तक। उसके बाद जो स्टेजेस हैं वो रिलेटिवली सरलता से उसमें प्रगति होती है, लेकिन अनर्थ निवृत्ति तक हमारी तरफ से अथक प्रयास की जरूरत है, कॉन्स्टेंट प्रयास की जरूरत है। और वो प्रयास का मुख्य केंद्र है श्रवणम और कीर्तनम। इसलिए ये श्रवण कीर्तन का जो जल है इसको नियमित रूप से लेना चाहिए। और फिर एक और बात जो चैतन्य महाप्रभु बताएं कि जल के साथ साथ एक दूसरी सावधानी रखनी है कि जो खरपतवार है, जो वीड्स हैं, उसको समय समय पर निकालना ये बहुत जरूरी है। तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा के रूप में जो वीड्स डेवलप होते हैं तो उसके लिए सावधानी से उनको देखना चाहिए। जैसे हम देखते हैं जो खेती का अनुभव थोड़ा बहुत है तो उसमें हम देखते हैं कि वीड्स को स्पेसिफिकली देखना पड़ता है जाकर कि वीड्स हैं कहाँ हैं, देखो उनको उठाओ निकालो उसको। और उसमें भी कोई जब खेती करते हैं तो उसकी जो शुरू की अवस्था होती है, जैसे मान ली 3 महीने में कोई फसल पक रही है तो उसके जो पहले के 1.5 महीने है उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वीड्स को निकाला जाए। एक बार जब फसल बड़ी हो गई तब फिर वीड्स जो है वो बड़े होते ही नहीं है, क्योंकि जब फसल बढ़ जाती है तो वीड्स जो दबा देती है वीड्स को, वीड्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए उसके बाद में फिर जांच की जरूरत नहीं, फिर वो प्रभावित नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में बहुत जरूरी। इसलिए अनर्थ निवृत्ति या प्रारंभ में अधिक आवश्यकता है कि हम वीड्स के प्रति अधिक सचेत रहें। बाद में फिर ये स्वाभाविक हो जाता है कि हम वो वीड्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, अधिक से अधिक स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन प्रारंभिक स्टेजेस में अधिक सावधान रहने की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से हम वीडिंग करें, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहें और श्रवण कीर्तन करें तो धीरे धीरे प्रगति होगा और ये सब लक्षण हमारे हम खुद अनुभव कर पाएंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराष्ट्र में भागवतम की जाए। कोई प्रश्न है?
वो समस्या को पहचानने का एक सिंपल तरीका ये है कि उनमें भाव के लक्षण होंगे लेकिन सदाचार नहीं होगा, ये सब दारू नशा ये सब होगा, सामान्य रूल है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे गदाधर पंडित वहाँ पे गए थे, मुझे विद्या नहीं दिया किसी के यहाँ, चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था, तो वो भी इस प्रकार से बाहरी रूप से दिखाई दे रहे थे कि ये सभी
भौतिक उसमें
विद्या देख रहे हैं और पान खा रहे हैं,
जैसे
फिर वो भाव के लक्षण भी दिखाते हैं। तो
जैसे
स्पेसिफिक केस में
जैसे आई थिंक गौर कृष्ण जी महाराज वंशीदास जी महाराज स्मोकिंग बीड़ीज, इसलिए और भी अनेक तरीके हैं जानने के लिए। विशेष रूप से भगवान की सेवा के अंदर उनका लगाव, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा और स्व की इंद्रियों को प्रसन्न ना करने की इच्छा, इसमें कभी कभी बाह्य रूप से जैसे असुर भी मोहन लीला होती है, ऐसे ही कई बार भक्त बाह्य रूप से ऐसे चीज़ें प्रकट कर सकते हैं जिससे सामान्य लोग उनसे दूर जाएं, सोचें हाँ ये तो बेकार, हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है। इसीलिए ऐसे विशेष ऐसे लोगों को समझने के लिए और थोड़ा अधिक भक्ति परिपक्वता चाहिए, उनके अधिक समीप से उनको उनके जीवन को देखना पड़ेगा। लेकिन यदि हम उनके जीवन को समीप से देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं ये वास्तव में वो किसी और अन्य हेतु कारण से वो ऐसा कर रहे हैं, वो उससे एडिक्टेड नहीं है, वो उसके आदि नहीं है, लेकिन और किसी और प्रयोजन की वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। उसके थोड़ा और ध्यानपूर्वक उनके जीवन को देखना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति की गहरी चीज़ों को पता लगता है उसके अधिक केयरफुल्ली उसको स्टडी करने से, उसका बाह्य प्रकरण एक हो सकता है, उसका आंतरिक एक हो सकता है। तो अधिक धीरे धीरे वो प्रकाशित होंगी कि क्या वास्तव में एडिक्टेड है या ये जस्ट एक बाह्य से, जैसे श्री प्रभुपाद वो कोई अंगूठी दिया या कोई एक बार वॉच दिया तो प्रभुपाद जी उस वॉच को दिखाते थे, कोई गेस्ट आता था देखो मेरे शिष्य ने ये वॉच दिया तो बाह्य रूप से लगेगा कि प्रभुपाद जी एंजॉइंग वियरिंग दिस वॉच। लेकिन फिर एक कोई दोबारा कोई भक्त आया, कोई कुछ अच्छा कुछ सेवा किया, तुरंत उठा के उसको दे देते। तो ऐसे ऐसे चीज़ों से हमको हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति किस हेतु से वो कार्य कर रहा है, उसके पीछे कोई और निहित उसका हेतु हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा और सावधान रह के देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सावधानी से देखेंगे तो हम पता लगा सकते हैं उनके जीवन में अल्टीमेट कैटेगरी यही है, आत्मेंद्र प्रीतिवांछा या कृष्णेंद्र प्रीतिवांछा। अभी इसमें पहचानने के लिए अधिक समय लग सकता है, अधिक चीज़ों को देखना पड़ सकता है, लेकिन अल्टीमेट गाइडिंग प्रिंसिपल इज ओनली दिस, आत्मेंद्रिय के लिए कर रहे हैं या कृष्ण। अल्टीमेटली आत्मेंद्रिय का सबसे ज़्यादा हाइएस्ट लेवल है ब्रह्म में लीन होने की इच्छा। भले ही वो भगवान का भजन भी कर रहे हैं कुछ भी, लेकिन कहीं ना कहीं लीन होने की इच्छा है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये सभी कामनाएँ हैं। अभी ये बड़ी सूक्ष्म है इसलिए इनको पहचानने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये तीन भुक्ति मुक्ति सिद्धि की कामनाएं उनके हृदय में होंगी, उनकी बात से उनके व्यवहार से कहीं ना कहीं प्रकट होंगी। लेकिन शुद्ध भक्त में भले ही बाह्य रूप से कई बार उनका आचरण हो, लेकिन उनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक प्रिंसिपल होगा कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामना नहीं होगी, केवल कृष्णेंद्र प्रीतिवांछा उनके अंदर होगी।
हमेशा जब हम डिस्कशन में उतरते तो गलत निकलता है, जैसे विद्यानगर में भी एक है तो उनके साथ वो भाव के सभी लक्षण एकदम दिखाते हैं, और फिर उनके साथ अगर हम बात करें तो वो विवेकानंद सभी से बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड है और ब्रह्म में लीन वगैरह, मतलब ये भी एक
मैंने बोला दार्शनिक, अरे दार्शनिक समझ उनका जो है वो देखना पड़ेगा। इस श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र किन विधि बिना, तो उनकी समझ यदि शास्त्र के अनुसार नहीं है तो
मतलब जैसे हम किसी को देखे तो ये दो स्टेप ऐसे ले सकते हैं, जैसे पहले तो वो दक्ष सदाचार नहीं है तो बात खत्म, उसके बावजूद हम फिर दूसरा स्टेप ये दार्शनिक समझ क्या है उसकी, ये ज्यादा पहले
या उसका जीवन या क्या समझ है उसकी, क्या है उसके जीवन का हेतु और क्या वो किस प्रकार समझा है अपने को, भगवान को, संबंध को, प्रकृति को, ये सब क्या समझा है। तो ये तो लक्षण भाव के लक्षण तो बहुत आय की बात है, अगर वो यही प्राथमिक चीज नहीं है तो इसका मतलब इस
राजा सुशोभिंद्र गहपुर एक जो श्लोक लिखा हुआ है आपकी
क्या
बारे में, राजा सुशोभिंद्र गहपुर
राजा
सुशोभिंद्र
अच्छा
उसके ऊपर श्लोक है ये कैसे संभव है बाबा, कैसे विश्वास योग्य है हमको।
एक मिनट, वो कुछ एक प्रश्न पूछ रहे हैं जो क्लास के संबंध है।
भागवत परंपरा क्या गुरु परंपरा, मतलब हमारा जो गुरु परंपरा है वो कि गुरु शिष्य का परंपरा या भागवत परंपरा, मतलब या हमारा जो गुरु विश्वदर्शवादी है ना, तो विश्वदर्शवादी के गुरु का नाम क्या है?
आप पूछ रहे हैं शिक्षा परंपरा या दीक्षा परंपरा, ऐसा पूछ रहे हैं?
परंपरा भागवत ने लिखा
हाँ,
तो क्या परंपरा है, दीक्षा परंपरा
क्या, शिक्षा परंपरा। हाँ तो शिक्षा परंपरा उसमें कुछ दीक्षा गुरु हैं, उसमें कुछ शिक्षा गुरु हैं। इसलिए भक्तिदान सरस्वती महाराज ने ये स्पष्ट किया कि परंपरा जो है शिक्षा परंपरा दीक्षा परंपरा दोनों ही इक्वली बोनाफाइड है, जो शिक्षा गुरु है और जो दीक्षा गुरु है उसमें कोई भेद नहीं है। तो हमारी जो परंपरा है उसमें अनेक शिक्षा गुरु हैं, जैसे हैं हाँ, और भक्तिवरण ठाकुर महाराज के जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वो शिक्षा गुरु हैं। यस, तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण हमारी परंपरा में वो शिक्षाचार है। लेकिन भक्तिवरण साहब ने पूरा बुक लिखा है इसके ऊपर कि वो बोनाफाइड है शिक्षा परंपरा। किस तरह से ज्ञान प्राप्त हुआ था, जैसे ऑथराइज्ड प्रोसेस है गुरु और भगवान को शरणागत होकर के, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना, जो गुरु और भगवान को समर्पित होते हैं उनको भगवान उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। तो भक्तियों ठाकुर गौरकिशोर जी महाराज की शरणागत की लेकर के वो सिद्ध हैं दूसरी बात है, लेकिन इस समय जो लीला है उसके अंतर्गत इसी प्रकार से प्राप्त की। क्यों नहीं, वो गौरकिशोर जी महाराज से शिक्षा लिए हैं और भक्तियों ठाकुर से शिक्षा लिए हैं, ऑटोमेटिक कैसे, गुरु शिष्य परंपरा से ही हुआ। नहीं, लेकिन शिक्षा गुरु तो है ना, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, गुरु शिक्षा हो शिक्षा गुरु हो कि दीक्षा गुरु, प्रिंसिपल तो वही रहा ना, गुरु गुरु आश्रय गुरु का आश्रय लेना, ये सब प्रिंसिपल तो वही रहा ना। उनका तो मेरे को ध्यान नहीं, उन्हें किससे, सभी दीक्षा शिक्षा और निष्ठानंद सब हुआ है, लेकिन हमारी जो परंपरा में उनका ऐसा नहीं कि भक्तिवेन ठाकुर ने दीक्षा नहीं लिया, लेकिन जो उनका विशेष शिक्षा जो 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 है वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से मिली, इसलिए जो लिंक जो प्रगाढ़ है वो शिक्षा गुरु की तरफ से प्रगाढ़ लिंक है। बाकी नियम तो सभी वही पालन हो ही रहे हैं, दीक्षा शिक्षा लेना वो सब एक ही है, लेकिन हमारे जो परंपरा में जो नाम है वो इस प्रकार से इंगित है जहाँ पर जो प्रोमिनेंट है, जो अधिक प्रगाढ़ जहाँ पर संबंध है, जो अधिक जो प्रवाहित हो रहा है वो ज्ञान वहाँ अधिक स्ट्रांगली वहाँ पर शिक्षा गुरु से प्रवाहित हो रहा है, इसलिए वहाँ पर शिक्षा गुरु का नाम दिया गया। ग्रंथराज, सुप्रसिद्ध शश बिंदु के 10,000 पत्नियां थी और उनमें से हर एक के 1,00,000 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उनके पुत्रों की संख्या 1 अरब थी। मतलब कैसे विश्वास करें, क्योंकि समय के अनुसार चीजें बहुत बहुत परिवर्तित होती हैं, अलग अलग समय के अनुसार, जैसे इसी समय में मच्छर भी हैं और हम भी हैं, मच्छर की आयु हमारी आयु बहुत अंतर है, मच्छर के लिए 100 साल सोचना जैसे इम्पॉसिबल है उसके लिए, तो उसी प्रकार से ये अलग अलग समय के वृत्तांत हैं, सतयुग त्रेतायुग, तो समय के अनुसार मनुष्य के जीवन के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। तो सतयुग में 1,00,000 वर्ष आयु है, तो हमें लग सकता है 1,00,000 हो सकती है, लेकिन एक कीट के लिए जो 12 घंटे जीवित रहता है उसके लिए मनुष्य का 100 साल भी बहुत बड़ा है, उसके लिए सोचने की बुद्धि से बाहर है, तो उसी प्रकार से ये भी है हमारे लिए।